आज है 17 अगस्त दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली में आज होगा अंतिम संस्कार।
9 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय ले जाया जाएगा। 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी।
किस तरह की और कितनी अलग थी उनकी राजनीति?
अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जो इंक्लिनेशन थे वो लिबरल थे, लेकिन वो थे इस पार्टी में, इसलिए उन्होंने खुद कहा ना कि क्या मैं गलत पार्टी में हूँ ये सब।
सुनिए बीबीसी के खजाने से अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना साक्षात्कार।
सतीत्व की रक्षा तो होना चाहिए, भारत की नारी सती हो, इससे तो किसी का मतभेद नहीं हो सकता।
और एक जमीनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के औरैया से।
वो फोन से चौकी पे कहते थे कि साहब ये गाय आ गई पकड़ो पकड़ो, तो पकड़वा देते, इसी फुंदक में उनको काट दिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबे समय से बीमार चल रहे 93 वर्षीय वाजपेयी जून महीने से ही नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। क्वीन ऑफ द सोल के नाम से मशहूर अमरीकी गायिका अरेथा फ्रैंकलिन का निधन हो गया है। वह 76 वर्ष की थी। एक बेहतरीन गायिका होने के साथ ही वो नागरिक अधिकारों को लेकर भी काफ़ी सक्रिय थी। 18 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली अरेथा ने पिछले साल ही संगीत को अलविदा कह दिया था। साल 2000 में पता चला कि उन्हें कैंसर है और कैंसर ही उनकी मौत की वजह बना। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा, वो लाखों लोगों के जीवन में खुशी लेकर आईं और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। ईश्वर ने उन्हें मधुर आवाज की जो सौगात दी थी, उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। वो एक खास महिला थीं और लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर तुर्की ने अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रूसन को रिहा नहीं किया तो वो नए प्रतिबंधों के लिए भी तैयार रहे। वॉशिंगटन में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनुचिन ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अगर उन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी तो हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। तुर्की ने ब्रूसन को साल 2016 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश में साजिश करने वालों से मिले होने के आरोप में हिरासत में लिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बम धमाकों की धमकी के बाद चिली की राजधानी सेंटियागो के लिए उड़ान भरने वाले 4 यात्री विमानों को तत्काल लैंड करना पड़ा। देश के नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि उन्हें कई बेनाम फोन मिले जिसमें यात्री विमानों में बम होने की चेतावनी दी गई। लाटाम एयरलाइंस का एक विमान जिसने लीमा से सेंटियागो के लिए उड़ान भरी थी, उसे दक्षिणी पेरू में लैंड कराया गया। इस विमान में 80 से ज़्यादा यात्री थे। अन्य विमानों की भी जाँच की गई। अधिकारियों का कहना है कि चेतावनी भरे जो फोन आए थे उनकी जाँच की जा रही है। वेटिकन ने कैथोलिक चर्चों में यौन शोषण से जुड़ी ग्रैंड जूरी की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों पर खेद जताया है। जांच में पाया गया है कि बीते 70 साल के दौरान राज्य के 6 केंद्रों के पादरियों ने 1000 से ज़्यादा बच्चों के साथ शोषण किया। वेटिकन ने एक बयान जारी कर कहा है कि पोप फ्रांसिस उन हज़ारों पीड़ितों के साथ हैं और वो इस तरह की घटनाओं को जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं। दुनिया भर की कैथोलिक चर्चों में यौन शोषण से जुड़ी जांच के क्रम में ये अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल है। ये रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चर्च के नेता शोषण करने वालों और संस्था को हर कीमत पर बचाना चाहते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें गेहूं की नई किस्में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गेहूं की ये किस्में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मांग को पूरा करने में उपयोगी साबित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने गेहूं के सैकड़ों जीन से एक जीनोम मैप तैयार किया है। ये प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2050 तक गेहूं की खपत काफ़ी बढ़ जाएगी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी एबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। मैं हूं संदीप सोनी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। दिल्ली से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
कल शाम गुरुवार को 5:30 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर आई, जिसके बाद राजनेताओं के बयान आने शुरू हो गए। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई उनकी महानता में कसीदे गढ़ रहा था। कल वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को देखने के लिए 2 बार दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 9:00 बजे देश को संबोधित किया। वाजपेयी के जाने को उन्होंने अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उनका जाना उनके सिर से पिता के साए के उठने जैसा है।
मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को कल रात उनके निवास स्थान 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर रखा गया, जिसके बाद वहां राजनेताओं का आना जाना लगा रहा। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। साथ ही उन्होंने वाजपेयी की अंतिम यात्रा के बारे में जानकारी दी।
सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यही निवास स्थान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। 9:00 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 6A दीनदयाल मार्ग पर ले जाया जाएगा और 1:00 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:00 बजे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे।
वाजपेयी के निधन के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने आज राज्य में छुट्टी की घोषणा की है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव ने वाजपेयी को याद करते हुए बीबीसी से कहा कि वो स्वभाव से कांग्रेसी थे।
आपको बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिश हुआ तो वो तो भरी सभा में माफी मांगे, तो वो एक तरह से संतुलित आदमी थे। यानी ठीक व्याख्या करो तो वो यानी स्वभाव से कांग्रेसी थे। यानी आदमी जो है वो बीजेपी में थे लेकिन बीजेपी के बाहर कई बार छलकते थे।
वाजपेयी के करीबी लाल कृष्ण आडवाणी तो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन उनके दूसरे करीबी मुरली मनोहर जोशी मीडिया से रूबरू हुए। जोशी ने कहा कि उन्होंने वाजपेयी को हमेशा अपना मार्गदर्शक माना।
उनका निधन राष्ट्र का भारी नुकसान करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरी तो व्यक्तिगत रूप में गहरी क्षति हुई है।
वाजपेयी के कार्यकाल के समय पाकिस्तान के साथ रिश्तों की हमेशा चर्चा की जाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाजपेयी कश्मीर के लोगों का दर्द जानते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
क्योंकि उनको मालूम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर सुकून देना है, अगर इनकी तकलीफ दूर करनी है, अगर इनके मुश्किलात को दूर करना है, तो पाकिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ दोस्ती के सिवा कुछ चारा नहीं।
कल रात वाजपेयी के निवास स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वाजपेयी को देखने के लिए कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एम्स अस्पताल पहुंचे थे। वाजपेयी के निधन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत ने आज अपने महान बेटे को खो दिया है, हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
एक ओजस्वी वक्ता से सर्वमान्य राजनेता तक का सफर तय करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी एक अलग तरह की राजनीति के लिए भी याद किया जाता है। विपक्षी दलों और नेताओं से उन्हें भरपूर सम्मान मिला। आखिर किस तरह की थी उनकी राजनीति? वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी से मोहम्मद शाहिद ने यही जानना चाहा।
वो बहुत ही तमीज से बात करते थे। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी खुद की जो इमेज थी, वो खुद उनकी जो दोस्ती थी वो सब सीपीएम के लीडर्स के साथ थी। उनके बहुत करीबी दोस्त एक हिंदी के पत्रकार प्रभाष जोशी थे, जो बहुत ही लिबरल सेक्युलर शख्स थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जो इंक्लिनेशंस थे वो लिबरल थे, लेकिन वो थे इस पार्टी में, इसलिए उन्होंने खुद कहा ना कि क्या मैं गलत पार्टी में हूँ ये सब। और क्योंकि उनकी इमेज ऐसी थी और इसमें झूठ नहीं था, सालों से वो एमपी थे जनसंघ के और बाद में बीजेपी के। बीजेपी तो 1980 में ही बनी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहले उन पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन जब उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया 1980 में, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण की खूब बात की उन्होंने जनसंघ और आरएसएस की कम बात की। वो हमेशा चाहते थे, हालांकि वो संघ के थे, आरएसएस के थे, और वो बीच बीच में ये सब भी कहते थे कि संघ इज माई सोल और ये सब, लेकिन पूरे जब उनके रेन में वो हमेशा मॉडरेट रहे, और जो हार्डलाइनर्स, जो आइडियोलॉजिकली हिंदुत्ववादी लोग थे, उनसे उनके काफी डिफरेंसेस भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी के।
जो बाबरी मामले में लेकर इन बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम थे, ये बिल्कुल उससे अलग ही रहे।
वो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कुछ जैसे मेरे ख्याल से बाबरी मस्जिद को गिरने से दो दिन पहले शायद वो लखनऊ में थे एक रैली में, डिटेल्स मुझे याद नहीं है। तो ये नहीं कि वो हिस्सेदार नहीं थे। जब एक मार्टिन ल्यूथर किंग या किसी की एक सेइंग है, देयर गो माई पीपल एंड आई मस्ट फॉलो देम फॉर आई एम देयर लीडर, बीच बीच में के ओरिएंटेशन से थोड़ी अलग थी, तो बीच बीच में वो कर देते थे ये। वो पंडित थे, ज्ञानी आदमी थे, वो समझते थे जो कहते हैं डुअलिज्म, कि ये भी है और वो भी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी खुद, जो उनके पर्सनल चॉइसेस थे, वो लिबरल थे।
तो अब समय उनकी राजनीति को और उनको किस तरीके से याद रखेगा?
देखिए, दो चीज अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे, वो नहीं हो पाए उनके लिए। एक, वो चाहते थे कि बीजेपी आरएसएस से इंडिपेंडेंट रहे। उन्होंने खुद मुझे एक इंटरव्यू में कहा था 1998 में, मेन मुद्दा वो यही कह रहे थे जब वो पावर में आए, कि बीजेपी थोड़ा हट के रहे आरएसएस से। वो नहीं हो पाया। नंबर टू, वो चाहते थे कि वो उनकी जो मेमोरी हो, इतिहास में उनको याद किया जाए ऐसे शख्स जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक ट्रीटी ब्रेक थ्रू कुछ किया, वो भी नहीं हो पाया। नंबर टू, दो चीजें नहीं हो पाई। लेकिन जो वो कर पाए, जो बहुत बड़ा काम था, अब हम अगर देखें कि वो 182 सीट्स लेकर हिंदुस्तान का सबसे स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट चला पाए। फिर से मैं कहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी असली डेमोक्रेट थे।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी। 19 साल पहले वर्ष 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए जो पहली यात्री बस रवाना हुई थी, उसमें खुद सवार होकर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे। बस जब बाघा बॉर्डर पर पहुंची तो वहां जो लोग मौजूद थे उनमें बीबीसी के पत्रकार आसिफ फारूकी भी थे। आसिफ फारूकी बता रहे हैं दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान में कैसे याद किया जाता है।
अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जाने माने और एक तरह से पसंद किए जाने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उनकी लाहौर यात्रा थी। वो 99 में लाहौर आए थे बस के थ्रू, और पाकिस्तान में आके उन्होंने नवाज शरीफ की दावत पे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन किया था। मैं वाघा बॉर्डर पर मौजूद था जब बिहारी साहब की बस जो है वो आई थी और वो नीचे उतरे थे। तो वहाँ पर मुझ समेत बाकी जो हमारे दोस्त मीडिया के लोग थे वो, और उसके बाद अगले दिन जब वो इमेजेस अखबारों में छपे तो पाकिस्तानी अवाम में भी इसी तरह के जज्बात आए थे। वो एक तरह की हम्बलनेस थी वाजपेयी साहब की जो लोगों को बहुत याद रही, और उसके बाद उनकी सिंसियरिटी जो है उसके बारे में यहाँ पे बहुत चर्चा हुआ कि वो एक शायद एक बहुत सिंसियर एफर्ट करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। दूसरी बात, जो वाजपेयी साहब की लाहौर यात्रा की पाकिस्तानियों के दिनों में याद रही, वो उनका शाही किले में खिताब है जो उन्होंने तकरीर की थी वहाँ पे, वो है। और वो वहाँ तक पहुँचे कैसे थे वो भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जमात इस्लामी जो फार राइट पार्टी है पाकिस्तान की, उन्होंने वाजपेयी साहब की लाहौर आने की मुखालफत की थी, और उन्होंने खूब दंगा किया था उस दिन लाहौर में। सड़कें बंद थीं, पुलिस के साथ उनकी झड़पें हो रही थी, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। इस सब के बीच वाजपेयी साहब जो हैं वो शाही किला पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने खुद से कश्मीर का जिक्र किया था। अब ये ऐसी बात है जो अनयूजुअल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के कोई इंडियन लीडर पाकिस्तान आके खुद से कश्मीर का जिक्र करे। और उसके जवाब में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की, जो प्राइम मिनिस्टर उनको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने वाजपेयी साहब की वो नज़्म पढ़ी थी कि जंग ना होने देंगे। तो ये वो इमेजेस हैं जो लोगों के दिलों पर नक्श हुए, लोगों को याद रहा, और इसी स्पिरिट में वाजपेयी साहब को याद किया जाता है कि वो एक सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान आए थे, और एक उनमें एक खास तरह की हम्बलनेस थी। और इसी बुनियाद पे वो जो एग्रीमेंट हुआ था जिसे लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं, वो इसीलिए वो भी लोगों को याद है, और इसलिए भी याद है कि वो वाहिद डिक्लेरेशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिसे पार्लियामेंट से एक्सेप्टेंस भी हुई। ये अलग बात है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुई और जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बरतरफ करके इक्तदार संभाला और उसके बाद वो फिर आगरा भी गए, लेकिन आगरा समिट को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो लाहौर में वाजपेयी साहब की आने की और उसके मौके पर जो हुई थी, और उसके बारे में कहा यही जाता है कि उसमें उसकी कामयाबी के पीछे शायद वाजपेयी साहब की सिंसेरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ फारूकी। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे बीबीसी हिंदी के खजाने से सुनेंगे आप अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना साक्षात्कार और एक जमीनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां हाल ही में दो साधुओं की बेरहमी से हत्या की गई है, सुनवाएंगे आपको। लेकिन पहले भूमिका राय बताएंगे आपको दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
संदीप, हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर दिवंगत राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर को प्रकाशित किया है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। साल 1996 में लोकसभा में वाजपेयी जी की कही इन पंक्तियों के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने उनके निधन की खबर को प्रकाशित किया है। द हिंदू भी इसी खबर पर लिखता है कि बीजेपी के सहज और विद्वान नेता वाजपेयी अब नहीं रहे। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा है, राजनीति ने अपनी कविता को खो दिया। इसके अलावा अगर एक बड़ी खबर की बात करें तो केरल में तेज़ बारिश और बाढ़ की खबर आज की सबसे प्रमुख खबरों में से एक है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने केरल में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। अखबार के मुताबिक बाढ़ के चलते अब तक करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये का नुकसान हुआ है। करीब 15 लाख लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। 10,000 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो टूट फूट गई हैं या प्रभावित हुई हैं, और 400 से ज़्यादा गाँव में उन्हें बाढ़ प्रभावित जो है वो घोषित कर दिया, क्योंकि पानी घुस गया है उन गाँव में। स्टेट्समैन ने भी इसी खबर को आगे बढ़ाया है और अखबार लिखता है कि बाढ़ और तेज़ बारिश के चलते करीब 114 लोगों की मौत हो गई। हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं वो हर अखबार में अलग अलग हैं। बिल्कुल, इसके अलावा उमर खालिद से जुड़ी एक खबर है।
उमर खालिद जी, वही जो
जेएनयू के छात्र जिनपे कुछ वक्त पहले हमला
जी
कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था। इस हमले में इस मामले में एक नया मोड़ ये आया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल आया है और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं और इन्होंने दावा किया है कि ये हमला उन्होंने ही किया था, और उनका ऐसा कहना है कि ये उमर खालिद पे ये हमला करके उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सौगात भेंट की है देश को, और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि उमर खालिद से जुड़ा जो मामला है उसकी जांच एक स्पेशल टीम कर रही है, जो कि सोशल मीडिया पे भी पूरी नज़र रखे हुए है। इसके अलावा एक मेडिकल से जुड़ी खबर है हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान अखबार में, जिसमें कहा गया है कि कीटनाशक से गर्भ में जो बच्चा पलता है उसे ऑटिज्म का ख़तरा होता है। यानी अगर गर्भवती स्त्री ऐसे माहौल में रहे जहां कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो इनहेल करेगी और इससे उसके शरीर में कीटनाशक के जो तत्व हैं वो जाते हैं, जिससे बच्चे को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने एनआरसी से जुड़ी एक खबर छापी है, जिसमें लिखता है अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी ड्राफ्ट से बाहर लोगों का ब्यौरा मांगा है। जी, तो
एनआरसी का संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से है। बहुत शुक्रिया भूमिका। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया था। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने वर्ष 1979 में लंदन का दौरा किया था। वाजपेयी तब बीबीसी के दफ्तर भी पहुंचे थे, जहां बीबीसी के प्रस्तोता कैलाश बुधवार ने उनका साक्षात्कार किया था। सुनिए उसी साक्षात्कार के कुछ अंश।
अटल जी, किस तरह आप देखते हैं कि समाज बदलेगा, जो पुरानी कुरीतियां अब नए सिरे से जीभें लपलपा रही हैं वो काबू पाई जा सकेंगी?
शिक्षा के प्रसार के साथ ये कुरीतियाँ घटना चाहिए थी, किंतु बढ़ रही हैं। पढ़े लिखे नौजवान दहेज लेने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जागरूक महिलाएं मैदान में निकल रही हैं, वे उन परिवारों के बहिष्कार की मांग कर रही हैं जहाँ बहुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और उस दुर्व्यवहार से तंग आकर उन्हें जिंदा जलना पड़ता है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हुए हैं कि कुछ दिन पहले बहू आग लगाकर मर गई और नए विवाह का संदेश लेकर कुछ लोग उस परिवार में पहुंच गए। ये स्थिति बड़ी दुखदायी है।
अटल जी, अपने यहाँ महिलाओं ने इस तरह के जुलूस निकाले हैं जिसमें इस बात की मांग की गई है कि सती प्रथा फिर से आरंभ की जाए।
ना, ये कहना ठीक नहीं है कि सती प्रथा को फिर से आरंभ करने के लिए कोई जुलूस निकाला गया। राजस्थान में एक रानी सती हुई थी, उनकी स्मृति में दिल्ली में एक जुलूस निकला था। उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मैंने लोकसभा में कहा था कि भारत में नारी तो सती हुई है, मगर अभी तक मुझे कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो पत्नी की मृत्यु के बाद सत्ता हो गया हो। सती होना कानून से अवैध है। सतीत्व की रक्षा तो होना चाहिए, भारत की नारी सती हो, इससे तो किसी का मतभेद नहीं हो सकता। किंतु पति की मृत्यु के बाद पत्नी सती हो जाए, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।
रह रहकर भारत से सांप्रदायिक दंगों की खबरें क्यों आती हैं? वहां हिंदू मुसलमान के दंगे बार बार क्यों भड़क उठते हैं?
सचमुच में स्वाधीनता के पश्चात और पाकिस्तान के निर्माण के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे अतीत की वस्तु हो जाने चाहिए थे। कुछ वर्षों तक ऐसा हुआ भी, किंतु दंगे फिर से शुरू हो गए। दंगे संख्या में बढ़ रहे हैं, उनमें मरने वाले लोगों की तादाद में वृद्धि हो रही है। फिर भी ऐसा सोचना कि देश में बहुत अधिक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं ठीक नहीं होगा। भारत बहुत बड़ा देश है, लाखों गांवों में हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, मिलकर जीवन बिता रहे हैं।
ये उस साक्षात्कार के अंश थे जब अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी की सरकार में विदेश मंत्री थे। और अब एक ज़मीनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं गांव के कुछ लोग पुलिस कार्रवाई की वजह से दहशत में आ गए हैं। औरैया से समीरात मजमिश की रिपोर्ट।
औरैया जिले के बिथुना कस्बे में कुदरकोट गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के भीतर घुसते ही कुछ दूर पर ही बाईं ओर पुलिस चौकी है, जबकि दाहिनी ओर गांव की आबादी। पुलिस चौकी से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही वो प्राचीन मंदिर है जहां के 3 पुजारियों की 2 दिन पहले बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में घायल एक पुजारी अभी भी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि इन साधुओं को गोकशी का विरोध करना भारी पड़ गया।
हमें तो लगता है उनकी कोई दुश्मनी नहीं होगी, बस यही अगर मैटर होगा तो गाय वाला होगा।
वो फोन से चौकी पे कहते थे कि साहब ये गाय आ गई पकड़ो पकड़ो, तो पकड़वा देते, इसी खुंदक में उनको काट दिया।
वैसी पर्सनल कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, किसी ने सामने तो नहीं देखा। वो रात में अपना जो है पकड़ ले जाते, कुछ किसान भी जो है जबरदस्ती उधर हाँक देते थे कि काटो खाओ, मेरी फसल बर्बाद कर रहे, तो ले जाओ काटो जाके, हमें क्या मतलब है।
गांव वाले देखते थे, शिकायत नहीं करते थे?
शिकायत करते हैं, प्रशासन भी कुछ ढीला है।
कई बार शिकायत की गई, कई बार यहाँ गाय पकड़ाई सर, यहाँ गाय यहाँ से घुस रही थी अंदर, मैं चौकी पे गया, वहाँ से सिपाही को लेके आया, यहाँ मैंने पूरी गाड़ी पकड़ाई, 20 गाय यहाँ उतरवाई इसी गली में, कुछ कार्रवाई नहीं।
वहीं गांव के प्रधान वीरेंद्र पाल कहते हैं कि साधुओं के अलावा गांव के लोग भी इस बात का अक्सर विरोध करते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था।
ये जो कसाई ये रात को गाय उधर से ही ले जाते हैं और फिर ऊपर वहाँ कुछ जगह खाली पड़ी वहाँ काटते, ये बाबा लोग जो देखते थे वो चौकी पे फोन करते थे, तो इनको ये बुरा लगा, तो इन्होंने मतलब जो है उनको धमकाया भी, कहा भी है कि हम तेरी जीभ काटेंगे। ये मतलब पकड़े भी गए चार, वो उधर जाकर कुछ लोग गए उनको छुड़ा दिया जाकर।
गांव के भीतर कुछ दूर पर मुस्लिम आबादी है जहां लोगों में थोड़ा डर है। कई घरों पर ताले जड़े हैं तो कुछ के भीतर सिर्फ महिलाएं ही दिख रही हैं। एक घर के बाहर कई पुलिस वाले बैठे थे और दरवाजे पर एक महिला गोद में छोटे बच्चे को लेकर रो रही थी। थोड़ी देर पहले ही उसके पति को पुलिस वाले पूछताछ के लिए उठा ले गए थे।
पकड़ लिया रास्ते में, हम बच्चे को आंगन में नहला रहे थे तो हमने जानी नहीं, लोगों ने नहीं गई यही घर रहे उनने।
कौन लोग कौन लेकर गए?
पुलिस वाले गए सर, चौकी भी ले गए।
कुछ बताया नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं?
नहीं मैंने जानी नहीं, लोगों ने बताया मुझे कि वो घर से तुम्हें पकड़ ले गए, तब मैंने बाहर निकल गया सर लोगों से कहा, सर लोगों ने कहा मुझे क्या मालूम।
यही हाल ज्यादातर घरों का था।
कोई भी मिला बेखता बेकसूर वो से उन्हें लेके चले गई घर में से लेके, जैसे ये वाला मकान है इनमें से लेके और ये सामने वाले मकान इसमें से, मतलब लड़के मिले तो उन्हें लेके चले गई।
6-7 लोग पकड़े।
किस लिए?
अब यही खून हुआ बाबा जी का और गाय कटाकुट हुई इसलिए पकड़े।
तुमको नहीं ले गए
साहब? हम तो बाहर थे, जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं, जो नहीं कहीं हटके नहीं जाता है उनको नहीं पकड़ते हैं। यहाँ से कहीं हिल के नहीं हम लोग जाते, बस इतना डर दहशत हो गई दिल में।
हमारे दो भाई ले गएंगे, सो रहे थे ऊपर, पापा एक्सपायर हो गए, कोई घर में था नहीं, मतलब मम्मी हम लोग सब लोग थे, पकड़ ले गए दो लोग भाई मेरे, पता कोई है नहीं घर में, भाई ये बंद हो गए, बड़े बड़े भाई थे मार के ले गए।
गांव के प्रधान वीरेंद्र पाल का कहना है कि डर के मारे मुस्लिम परिवारों के कई लोग गांव से बाहर चले गए हैं।
मेरे पास जो परेशान वो खुद आए हैं, स्वयं चले गए। अभी 3-4 लोग आए थे और कुछ औरतें आई थी मुसलमानों की, तो बोले कि प्रधान जी हम तो बहुत परेशान है, तो मैंने उनको यही समझाया कि अपने घर रहो सामना करो, अगर तुम निर्दोष हो।
घर छोड़ के भी कुछ लोग गए हैं क्या?
घर छोड़ के वो ऐसे लोग भाग गए, काफी भाग गए बस पे, मैंने मतलब जो यहाँ 5-7 आए थे वो भी बस पे चढ़ के भाग गई।
पुलिस चौकी पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी और गोसेवक बैठे थे, तो दूसरी ओर वो 3 गायें भी एक पेड़ से बंधी थी जिनके बारे में पुलिस वालों का दावा था कि उन्होंने उनको गोकशी करने वालों से बरामद किया था। वहां मौजूद औरैया के एडिशनल पुलिस अधीक्षक एम के सक्सेना के पास तमाम सवालों का संक्षिप्त जवाब था।
जो गाय थे उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और वर्कआउट उसके बाद हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया था और उसके बाद से कोई ऐसी बात नहीं, पूछताछ की जा रही है।
बहरहाल पुलिस का दावा है कि उसने कई लोगों से पूछताछ की है और दोषी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद पुलिस अभी दोषियों की तलाश के लिए संघर्ष ही कर रही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC, कुदरकोट गांव, औरैया।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत इस समय 0-2 से पिछड़ा हुआ है, इसी के चलते ये मैच भारत के लिए करो या मरो का है। वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन भारत की सीरीज में वापसी पर कहते हैं,
जीत सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही टीम की तुलना करें तो अब तक ये रहा है कि दोनों ही टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज या टॉप ऑर्डर के जो बैटिंग है वो नहीं चल पाई है। ये कहना होगा कि इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर है, एक विराट कोहली को निकाल दे तो बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई है। एटलीस्ट इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं बेस्टो ने कोई एक पारी खेल ली या रूट ने, लेकिन इंडियन टॉप ऑर्डर में किसी ने कोई रन नहीं बनाया। लेकिन भारतीय बॉलर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि बॉलर जो है वो तो अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन बल्लेबाजों पर बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है। मैं कहूंगा कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह रहा हूं, मुश्किल है कि टीम जीते।
विराट कोहली की टीम के लिए चिंता की बात ये है कि ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर पहली बार 1959 में टेस्ट मैच खेला था जिसमें उसे पारी और 59 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत इस मैदान पर अब तक 6 टेस्ट मैच खेल चुका है जिसमें से उसे सिर्फ एक में जीत मिली है, 2 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी और 3 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। भारत ने इस मैदान पर एकमात्र टेस्ट जीत 2007 में दर्ज की थी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान की इस जीत में अहम भूमिका रही थी। उन्होंने मैच में कुल 134 रन देते हुए 9 विकेट लेकर भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई थी। और अब बात फुटबॉल की। भारतीय पुरुष टीम फीफा की तरफ से जारी ताज़ा विश्व रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 96 नंबर पर पहुंच गई है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीतने वाली फ्रांस की टीम 6 स्थानों की छलांग लगाकर टॉप पर आ गई है। फीफा की ओर से कल जारी ताज़ा विश्व रैंकिंग में भारत के अब कुल 1242 अंक हो गए हैं, जबकि फ्रांस की टीम 1726 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम के समापन से पहले खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्वीन ऑफ द सोल के नाम से मशहूर अमरीकी गायिका अरेथा फ्रैंकलिन का निधन हो गया है, वह 76 वर्ष की थी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर तुर्की ने अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रूसन को रिहा नहीं किया तो वो नए प्रतिबंधों के लिए भी तैयार रहे। बम धमाकों की धमकी के बाद चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरने वाले 4 यात्री विमानों को तत्काल लैंड कराना पड़ा है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार 7:30 PM। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। BBCHindi.com है आपके साथ।